दिन भर तारीख 13 अप्रैल दिन शुक्रवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। कठुआ रेप केस को लेकर जम्मू कश्मीर के सत्ताधारी गठबंधन में बढ़ती खाई के बीच पीडीपी नेता रफी अहमद बोले,
इस सिलसिले में हमारे साथ भी हमारे साथी हैं जिनकी जरूरी है नाराजगी है, लेकिन ये कोई बंटवारा नहीं है।
कांग्रेस ने कठुआ उन्नाव रेप मामलों में पीएम की चुप्पी पर उठाए सवाल, बचाव में उतरी बीजेपी की महिला ब्रिगेड।
कठुआ के अंदर एक बहुत ही फेयर इन्वेस्टिगेशन हुई है और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है।
और विवेचना में सुनिए नैन सिंह रावत की कहानी, जिन्होंने 150 बरस पहले अपने कदमों से नापे थे तिब्बत के दुर्गम इलाके।
चढ़ाई में उनके कदमों की दूरी, उतार में उनके कदमों की दूरी निकाली गई, दोनों का मीन निकाला गया, तो नैन सिंह का जो एक स्टेप था वो 32.5 इंच का बनता।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार नवीन नेगी से। उत्तर प्रदेश के उन्नाव और जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुई रेप की दो कथित वारदातों के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि दोनों ही मामलों में जल्दी से जल्दी जांच पूरी कर आरोपियों को सजा सुनाई जाए। जम्मू के कठुआ में 8 साल की लड़की के साथ हुए रेप के मामले में अभी तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक नाबालिग युवती के साथ हुए कथित रेप के मामले में आज सीबीआई ने सत्ताधारी दल भाजपा के विधायक कुलदीप सेंगनर को गिरफ्तार किया है। ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मार्क सेडविल ने इस बारे में नई जानकारी दी है कि रूसी विशेष दल को रासायनिक युद्ध हथियारों को इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग किस तरह दी जाती है। नेटो के महासचिव को एक खत में उन्होंने लिखा है कि रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के तरीकों में छोटी मात्रा में नोविचोक श्रेणी के नर्व एजेंट को दरवाजे के हैंडलों में लगाना भी शामिल किया गया है। फॉरेंसिक वैज्ञानिकों का मानना है कि रूस के पूर्व जासूस सर्गेई स्क्रिपल और उनकी बेटी यूलिया पर हुए कथित नर्व एजेंट हमले में इसी तरीके का इस्तेमाल किया गया था। इस खत में यह भी लिखा गया है कि साल 2013 से ही यूलिया के ईमेल अकाउंट पर भी रूसी खुफिया विभाग की नज़र थी। इसके साथ ही लंदन में रूसी राजदूत अलेक्जेंडर याकोवेंको ने ब्रिटेन की सरकार पर सलिसबरी में हुए नर्व एजेंट हमले के सभी सबूत मिटाने के आरोप लगाए हैं। एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा,
We have every reason to see such actions as an abduction of two Russian nationals, or at least as they are foreseeable.
स्कॉटलैंड की पुलिस ने यूलिया स्क्रिपल की तरफ से जिस तरह का बयान जारी किया है वह हमारे संदेह को गहराने के लिए काफी है। हमें मालूम चला है कि ब्रिटेन की सरकार इस मामले से जुड़े तमाम सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रही है। ऐसा करके वे एक निष्पक्ष जांच से बचना चाहते हैं। ये थे लंदन में मौजूद रूसी राजदूत के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। रूस ने कहा है कि उसके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि पिछले हफ्ते सीरियाई शहर में हुए कथित रासायनिक हमले के पीछे एक विदेशी खुफिया सेवा का हाथ था। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने हालांकि किसी देश का नाम नहीं लिया है। पिछले हफ्ते सीरिया के शहर डूमा में संदिग्ध रासायनिक हमले की खबर सामने आई थी। इस मामले में रूस सीरियाई सरकार के साथ खड़ा है, जिसका कहना है कि सीरिया में मौजूद विद्रोही रासायनिक हमले की फर्जी खबरें फैला रहे हैं। वहीं अमरीकी अधिकारियों का कहना है कि लोगों से प्राप्त सैंपल की शुरुआती जांच करने के बाद पता लगा है कि हमले में क्लोरीन और सैरिन गैस का इस्तेमाल किया गया। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई भी बात अंतिम चरण तक नहीं पहुंच पाई है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के राजनीति में हिस्सा लेने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। 5 जजों की पीठ ने एकमत होकर यह निर्णय लिया। पिछले साल भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करने के बाद नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री के पद से हटना पड़ा था। हालांकि नवाज शरीफ ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को झूठा बताया था। नवाज शरीफ की राजनीतिक सहयोगी मरियम औरंगजेब ने सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा निर्णय की तुलना दो पूर्व प्रधानमंत्रियों की हत्या से की है। मरियम औरंगजेब ने कहा,
ये वही फैसला है जिससे शहीद भुट्टो को फांसी चढ़ाया गया था। ये वही फैसला है जिससे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया था। और आज एक दफा फिर पाकिस्तान के तीसरी दफा
मरियम औरंगजेब कह रही थीं कि जिसे पाकिस्तान की जनता ने वोट देकर 3 बार प्रधानमंत्री चुना, उसे राजनीति से आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने अयोग्यता का फैसला भी पाकिस्तान की जनता को लेने का फैसला पाकिस्तान की जनता ले, ऐसी बात कही। आज 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई। न्यूटन को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म घोषित किया गया। वहीं इसी फिल्म में काम करने वाले अभिनेता पंकज त्रिपाठी को विशेष पुरस्कार दिया गया। अभिनेता विनोद खन्ना को मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। वहीं श्रीदेवी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी दिया गया। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। बलात्कार के दो मामलों को लेकर पूरा देश उबलता दिख रहा है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक विरोध के तीखे सुर सुनाई दे रहे हैं। एक मामला जम्मू कश्मीर के कठुआ का है। पुलिस के मुताबिक कठुआ में 8 साल की नाबालिग से रेप के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। दूसरा मामला उत्तर प्रदेश के उन्नाव का है, जहां एक महिला ने एक विधायक समेत कुछ लोगों पर बलात्कार के आरोप लगाए हैं। दोनों मामले नए नहीं हैं। कठुआ का मामला जनवरी का है और उन्नाव का मामला पिछले साल का है, लेकिन इसे लेकर सियासी पारा अब चढ़ता दिख रहा है। अभी से करीब 4 घंटे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए। राहुल गांधी बीती रात इंडिया गेट पर विरोध जताने पहुंचे थे। इस मुद्दे पर आज भारतीय जनता पार्टी भी सक्रिय नजर आई। बीजेपी की महिला नेताओं ने कांग्रेस पर पलटवार किया। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने क्या कहा, वो सुनिए।
कठुआ के अंदर एक बहुत ही फेयर इन्वेस्टिगेशन हुई है और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। तुरंत क्राइम ब्रांच को जो है मैटर सौंपा गया और 6 से 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्चे सबके बच्चे हैं और महिलाएं सब महिलाएं हैं, किसी जाति किसी धर्म की हो, अगर उनके साथ कहीं पर भी प्रताड़ना हो रही है तो हमें उन महिलाओं के साथ ही खड़े रहना है।
ये थी बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी, जो सरकार का बचाव कर रही थी। कठुआ के जिस मामले को लेकर पूरे देश में नाराजगी है, वहां फिलहाल क्या स्थिति है, ये जानने के लिए बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली कठुआ पहुंचे। सुनिए उनकी ये रिपोर्ट।
हरे रंग और गुलाबी खंभों वाला उसका घर खाली है। चूल्हा लीप दिया गया है, दरवाजे पर लगे ताले पर लाल धागे वाली हरी तावीज पड़ी है, शायद घर के हिफाजत की दुआओं के साथ। लेकिन दुआएं उसकी हिफाजत ना कर पाई, या शायद बद्दुआओं में असर ज्यादा था। 8 साल की उस बच्ची को पुलिस के मुताबिक एक देवस्थान में कैद रखा गया। हफ्ते भर उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, यहाँ तक कि गला घोंट कर मारे जाने से चंद मिनटों पहले तक, और फिर लाश जंगल में फेंक दी गई। लेकिन बात यहाँ नहीं रुकी है। एक नाबालिग के बलात्कार के मामले में भी हिंदू मुसलमान घुस गया है।
मिस्टर नाबेद को कश्मीर से क्यों मंगवाया गया, फिर बानी को जो इंस्पेक्टर है।
वहाँ बैठी है मधु, एक गृहिणी जो उन लोगों में से हैं जो इस नाबालिग की हत्या और बलात्कार के केस को CBI को सौंपे जाने की मांग कर रहे हैं और उसके लिए 13 दिनों से उपवास कर रहे हैं। मेरे ये कहने पर कि ये जांच एक कश्मीरी पंडित पुलिस अध्यक्ष रमेश जल्ला की देखरेख में हो रही है, वो कहती हैं।
वो पंडित है लेकिन उनको गलत दिखाया जा रहा है। उनको इन्वेस्टिगेशन करने के बाद दिखाया जाता कि हमने ये कल्प्रिट पकड़ लिया और इसने ये गुनाह कबूल किया।
भारतीय प्रशासित जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रमुख SP वैद्या ने कहा है, जब सूबे की पुलिस आतंकवादियों से निपट सकती है तो ये केस क्यों जांच नहीं कर सकती। इधर पुलिस के चार्जशीट के मुताबिक मुख्य अभियुक्त सांझी राम बकरवालों के इलाके में बसने के विरोध में थे और पीड़िता के परिवार को जमीन बेचे जाने के खिलाफ मामला हाईकोर्ट तक गया था। रसाना गांव में हाल में ही 3 बकरवाल परिवारों ने आकर घर बना लिया है। पास के दूसरे गांवों और जिलों में भी बकरवाल और गुज्जर बसने लगे हैं। मवेशियों को चराकर गुजर बसर करने वाले ये लोग मुसलमान जाति के हैं, जबकि ऐसा ही एक और समुदाय गद्दी हिंदू जाति से ताल्लुक रखता है। सांझी राम के चचा बिशन दास शर्मा कहते हैं,
वो जो तालिब हुसैन है ना, ये उनके साथ आज से नहीं है, ये तकरीबन मेरे ख्याल को 25 साल पहले से है। 20-25 साल पहले से इसको आपस में कुछ हुई थी। पूरी फैमिली को जो है ना इन्वॉल्व करना चाहता है ना, पूरी फैमिली को उसको मतलब इतनी हो जाए आपस में।
जम्मू और घाटी के बीच की खाई जो हमेशा से मौजूद रही है, वो 2008 अमरनाथ हंगामे के बाद बढ़ गई है और उसमें हिंदू मुस्लिम का मुद्दा भी सामने आ गया है। लेकिन साथ ही बढ़ी है इस क्षेत्र में BJP की सीट, जो अब जम्मू कश्मीर की सत्ता में हिस्सेदार है। एक समय इस हंगामे के बाद सामने आए हिंदू एकता मंच को BJP के कुछ मंत्रियों का समर्थन भी बताया जाता था, लेकिन फिलहाल वो चुप हैं। फैसल मोहम्मद अली, BBC, रसाना, कठुआ।
कठुआ केस को लेकर जम्मू कश्मीर के सत्ताधारी PDP BJP गठबंधन के बीच भी दरार दिखने लगी है। बीजेपी के कोटे से सरकार में शामिल दो मंत्रियों के कथित तौर पर अभियुक्तों के समर्थन में हुए एक कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर पीडीपी के नेता सवाल उठा रहे हैं। मैंने इसे लेकर पीडीपी नेता रफी अहमद मीर से बात की और सबसे पहले पीडीपी में उभर रहे असंतोष के बारे में पूछा।
बड़ा पॉजिटिव साइन है कि सारा मुल्क जाग गया और उनकी काफी आलोचना की जा रही है, उनको निंदा की जा रही है और हमारे में भी कोई छुपी बात नहीं है। हमारा भी एक सेक्शन है जहां आवाजें ये आ रही हैं कि इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, लेकिन चूंकि ये पीडीपी के साथ ताल्लुक नहीं रखते, हमारे जो दो साथी मिनिस्टर वहां गए थे बीजेपी के साथ ताल्लुक रखते हैं, ये उनकी पार्टी को देखना है वो किस तरीके से इसमें एक्शन करना चाहेंगे, ये बात है।
ये सवाल उठ रहा है, उमर अब्दुल्ला का आपने बयान देखा ही होगा, उन्होंने कहा कि हसीब द्राबू को चीफ मिनिस्टर हटा सकती हैं, तो ये दो मंत्री जो हैं जिन पर सवाल है इनसे क्या कोई सवाल भी नहीं पूछा जा सकता?
नहीं, मैं सवाल पूछा जा सकता है, ये जरूरी नहीं कि जो हमारे और उनकी पार्टी के दरमियान बातचीत हो वो पहले ही पब्लिक हो जाए, लेकिन ये बात सही है कि बाकी पार्टियां उमर अब्दुल्ला को समेत इस पर सियासत करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते इस हीनियस क्राइम पे जहाँ 7-8 साल की बच्ची को रेप किया गया, टॉर्मेंट किया गया, उनको मारा गया, इस पर हम कोई सियासत नहीं करना चाहते हैं। रहा सवाल द्राबू साहब का, द्राबू साहब हमारे पार्टी के अपने फर्ज थे, उनके खिलाफ एक्शन लेना या न लेना, पद से हटाना, वो विद इन द पार्टी था, लेकिन ये चूंकि हमारे अलाइज हैं, इनके साथ बातचीत करने में दो स्टेप में बात होगी और उनके साथ ये बात की जाएगी।
मीर साहब, आपने बयान देखा होगा अपने टूरिज्म मिनिस्टर तसद्दुक मुफ्ती साहब का भी, जो केंद्र सरकार को भी क्वेश्चन कर रहे हैं, और जो नाराजगी की मैंने शुरुआत में बात की थी पीडीपी के अंदर से, उन्होंने कहा कई लोग हैं जो इस तरह की बात पार्टी में कर रहे हैं।
ये कोई छुपी बात है नहीं, न कोई नई बात है हमारे लिए। अच्छा तादाद हमारा लोगों का ये है जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त के हालात है, इनसे खुश नहीं है, और जिस वक्त हमने हाथ मिलाया सेंटर के साथ, बीजेपी के साथ, इसीलिए मिलाया था कि हम शायद तेजी से तेज रफ्तारी से जम्मू कश्मीर के हालात को दुरुस्त कर पाएंगे, नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ हालात ऐसे थे। हमने एजेंडा फैलाने स्थायित्व तो किया था लेकिन हम उसको परस्यू नहीं कर पाए, लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी और ये सारी बातें बैक फ्रंट पे आ गई, हम इसको पॉजिटिवली नहीं कर पाए। तो इस सिलसिले में हमारे साथ भी हमारे साथी हैं जिनकी जरूरी है नाराजगी है, लेकिन ये कोई बंटवारा नहीं है।
ये थे रफी अहमद मीर। उधर उत्तर प्रदेश में उन्नाव रेप के इस मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। इसमें पीड़ित ने विधायक कुलदीप सेंगर पर आरोप लगाए हैं। अपडेट के लिए अब से कुछ देर पहले मैंने उन्नाव में मौजूद समीर आत्मज मिश्र से बात की।
पूरी जो ये घटना है वो सीबीआई के इर्द गिर्द घूमती रही। सुबह ही तड़के सीबीआई विधायक जो बांगरमऊ के हैं कुलदीप सिंह, उनको ले गई उनके आवास से, और अभी तक पूछताछ जारी है। हमारी जानकारी के अनुसार अभी भी उनसे पूछताछ चल रही है। दूसरी ओर सीबीआई की एक टीम उन्नाव आई, एक टीम उन्नाव 10 लोगों की टीम थी जिसमें कुछ लोग आए जो पीड़ित परिवार से, करीब 4-5 घंटे उन्होंने पूछताछ की। दूसरी टीम इन लोगों का जो गांव है माठी गांव वहां गई और एक टीम माठी थाने में गई। माठी थाने में जो सस्पेंड किए गए पुलिसकर्मी हैं जिनमें से एक एसओ थे, एक एसएसआई और 4 सिपाही थे, उनसे पूछताछ अभी चल रही है और जो पीड़ित परिवार से करीब 4-5 घंटे पूछताछ करने के बाद सीबीआई की टीम यहां से जो उन्नाव की एसपी है उनके पास पूछताछ के लिए गई। ये मामला रहा पूरा सीबीआई का। उसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज अपने जो उसको फैसला देना था उसमें उन्होंने कहा है कि सीबीआई जो कुछ भी जानकारी हासिल कर रही है उससे हाईकोर्ट को भी अपडेट कराए और 2 मई तक ये भी बताए कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है या जो कुछ भी सूचना उसके पास है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट को भी अपडेट करे।
जी समीर, स्थिति क्या है? कुलदीप सेंगर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है या केवल पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है?
नहीं, अभी देखिए गिरफ्तार तो नहीं है, अभी तो उनको हिरासत में ही लेकर के पूछताछ हो रही है, गिरफ्तारी जैसी कोई बात नहीं आई है। और गिरफ्तारी चूंकि ना तो सीबीआई की ओर से इस तरह के कोई बयान दिया गया कि उनको गिरफ्तार किया गया है और ना ही किसी और सरकारी एजेंसी की ओर से कहा गया है।
जानकारी दे रहे थे समीर आत्मज मिश्र,
बीबीसी इंडिया बोल।
एक ओर भीमराव अंबेडकर की विरासत को हथियाने की कोशिश तो दूसरी ओर उनकी मूर्तियां तोड़ने की बढ़ती घटनाएं। क्या है इस सियासत के मायने? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर इस बार इंडिया बोल में इसी विषय पर होगी चर्चा। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 14 अप्रैल शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1800-102-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब विवेचना। उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में सुदूर एक छोटे से गांव में जन्मे पंडित नैन सिंह रावत ने आज से 150 साल पहले हिमालय के पार पैदल ही तिब्बत और यारकंद के दुर्गम इलाकों की खाक छानी और अपने ऐतिहासिक अनुभवों को डायरी में दर्ज किया। लेकिन बहुत से लोगों ने पहली बार उनका नाम तब सुना जब पिछले साल 21 अक्टूबर को गूगल ने उनके जन्मदिन पर डूडल बनाया। किस मिट्टी के बने होते थे वो लोग जो इस दुनिया को समझने के लिए अनजान मुल्कों की अनजान राहों पर बेखौफ निकल पड़ते थे। विवेचना में बीबीसी हिंदी के रेडियो एडिटर राजेश जोशी से सुनिए पंडित नैन सिंह रावत की कहानी।
विवेचना। जब भी दुनिया को अपने कदमों से नापने वाले पुराने अन्वेषकों की बात होती है तो वर्नियर, टेवर्नियर, मार्कोपोलो और इब्न बतूता जैसे घुमक्कड़ों का नाम जहन में आता है। लेकिन पंडित नैन सिंह रावत का नाम कितने लोगों ने सुना होगा? कुमाऊं की जोहार घाटी के गरीब परिवार में पैदा हुए नैन सिंह रावत ने उस दौर में हिमालय पार करके तिब्बत की अबोझ धरती को अपने कदमों से नापा, जब न घोड़ा गाड़ी थी, न सड़कें और न हवाई जहाज। 1863-64 में तिब्बत के ल्हासा से लेकर ठोक जालुंग और 1873-74 में उससे भी आगे यारकंद तक का सफर करके पूरे इलाके के भूगोल को उन्होंने माप डाला।
दरअसल कभी कभी हम किसी आदमी का मूल्यांकन इस आधार पर करते हैं कि वो कहाँ पहुंचा। जैसे नैन सिंह सर्वे के इतिहास में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के सर्वोच्च सम्मान को पाने वाला व्यक्ति था, नंबर वन। नंबर टू, पेरिस की ज्योग्राफिकल सोसाइटी का स्वर्ण पदक उसको मिला, सर्वे ऑफ इंडिया का स्वर्ण पदक उसको मिला, CIE का तमगा उसको मिला, जमीन की ग्रांट उसको मिली, ये सब मिला उसको। लेकिन ये उसके जीवन का क्लाइमेक्स था। सवाल यह है कि वो कहाँ से चला था। अगर ये हम पीछे को देखते हैं तो नैन सिंह की बहुत ही हम्बल और बहुत ही कठिन बिगिनिंग थी।
हिमालयी इतिहास, भूगोल, पर्यावरण और समाज के जानकार डॉक्टर शेखर पाठक उन गिने चुने लोगों में से हैं जिन्होंने पंडित नैन सिंह रावत की मृत्यु के लगभग 100 साल बाद उनके योगदान पर अध्ययन शुरू किया और इधर उधर खोई उनकी यात्रा डायरियों को खोजना शुरू किया। इन डायरियों में बरती गई भाषा को समझने और विश्लेषित करने का काम किया कुमाऊं विश्वविद्यालय की प्रोफेसर उमा भट्ट ने। सन 2006 में दोनों ने नैन सिंह के काम को संकलित करके 600 पन्ने की किताब छापी एशिया की पीठ पर। भारत में 1857 के विद्रोह के बाद महारानी विक्टोरिया का साम्राज्य स्थापित हो गया था और अंग्रेजों ने पूरब का सर्वे शुरू कर दिया था। देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हो चुकी थी और अब अंग्रेजों की नजर हिमालय के पार थी,
क्योंकि तिब्बत में किसी भी फिरंग का आना मना था और भारतीय लोगों को सिर्फ उसी जगह जाने की आज़ादी थी जहां उनका इमीडिएट मार्केट होता था, तिब्बत का मार्ट होता था। तो इस तरीके से उनको तिब्बत के लिए ऐसे चेहरों की जरूरत थी जिनके चेहरे मंगोलॉइड हों और जिनके होठों पर तिब्बती भाषा हो।
ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत हो रहे व्यापक सर्वे में काम करने के लिए श्लागेंट वाइट बंधुओं को जर्मनी से हिंदुस्तान भेजा गया था। नैन सिंह ने कुली बनकर उनके साथ काम करना शुरू कर दिया।
श्लागेंट वाइट ब्रदर्स उनसे बहुत जबरदस्त तरीके से खुश हुए कि इतनी जल्दी ये सीख जाता है। जब नैन सिंह श्लागेंट वाइट ब्रदर्स के साथ गए तो उन्होंने ये तय कर लिया कि इस यात्रा के बाद वो उसको इंग्लैंड ले जाएंगे। अब नैन सिंह के लिए वो बड़े डिलेमा में था, क्या करूं, क्योंकि उसने कहा था कि अगर मैं समंदर पार करके वहां चला जाऊं तो क्या पता जाति से मुझे बाहर निकाल दिया जाए।
नैन सिंह रावत ने इस दुविधा को अपनी डायरी में दर्ज किया है। लगभग 150 साल पहले देवनागरी लिपि में मगर हिंदुस्तानी जबान में लिखी गई इस डायरी की भाषा गौर करने लायक है।
एक रोज साहब ने मुझसे कहा कि तुझे 100 रुपया माहवारी तनख्वाह देंगे और 1000 रुपया पेशगी तनख्वाह घर के गुजारे के लिए देते हैं। तुम हमारे इंग्लिस्तान को सिर्फ 2 वर्ष के लिए आओ, बाद तीसरे साल वापस जाओगे। मैंने विलायत जाने से इनकार की। साहब भी नहीं मानता था कि तुमको आना ही होगा। फिर मैंने दिल में सोचा कि अगर मैं साहब का कहा नहीं मानता हूँ तो साहब नाराज होते हैं, बेहतर है जो भी हो विलायत हो आऊं। माणी ने कहा, अगर तू इंग्लैंड को जाता है तो तू हमारे तरफ से अभी मर गया, तेरे लिए छाक अभी छोड़ते हैं।
नैन सिंह रावत इंग्लैंड तो नहीं गए पर यूरोपीय अफसरों के संपर्क में आने के कारण उन्हें सर्वे ऑफ इंडिया में नौकरी मिल गई। उनकी ट्रांस हिमालय यात्राओं की ये शुरुआत थी। शायद तिब्बत और यारकंद में हासिल किए गए उनके अनुभव सरकारी रिपोर्टों और अकादमिक किताबों में ही छिपे रह जाते, मगर डॉक्टर शेखर पाठक ने जगह जगह से नैन सिंह के हाथ की लिखी डायरियों को खोजा।
नैनीताल में एक हमारे बहुत परमप्रिय बुजुर्ग थे जिनका नाम था कविंद्र शेखर उप्रेती जी, जो प्रिंसिपल रहे थे मुंशियारी में भी और उधर आपके नीतिमाणा के इलाके में भी। उन्होंने कहा कि मेरे पास नैन सिंह की डायरियां हैं, तो देखने के लिए गए तो बड़े पुराने बंडल में पड़े हुए थे वो। अब संकट ये था कि उनको टच करें तो वो टूट पुरानी, यानी कि करीबन 150 साल पुराने कागज मान सकते हैं आप, 1870-80 के बीच में लिखे गए होंगे वो। तो कमल जोशी हमारे दिवंगत साथी जो हमारे पहाड़ के फोटो एडिटर भी रहे, वो उस जमाने में नैनीताल में PhD कर रहे थे केमिस्ट्री में, उनके पास कैमरा था, उनके पास एक अपनी मिनी लेबोरेटरी थी और नैनीताल में रहते थे। उन्होंने कहा कि मैं सब फोटो खींच के उनके प्रिंट बना के तुमको दे दूंगा।
इन्हीं डायरियों से पता चला कि उन्होंने 1854 से 1874 के बीच 5 लंबी लंबी यात्राएं की और अपने अनुभवों को दर्ज किया। उन्हें खुद की पहचान छिपाकर तिब्बत में जाना था, तिब्बती शासकों और चोर डाकुओं से अपनी हिफाजत भी करनी थी और साथ ही बिना साजो सामान के तिब्बती पठार को मापना भी था। पर इन अभियानों पर निकलने से पहले सर्वे ऑफ इंडिया में नैन सिंह और उनके भाई मानी सिंह को सर्वेयर की ट्रेनिंग दी गई।
चढ़ाई में उनके कदमों की दूरी, उतार में उनके कदमों की दूरी निकाली गई, दोनों का मीन निकाला गया, तो नैन सिंह का जो एक स्टेप था वो 32.5 इंच का बनता था। नैन सिंह जब 2000 कदम चल लेगा तो 1 मील बनता था, और कदम से आपने मील बनाने थे। नंबर वन। नंबर टू जो इंटरेस्टिंग बात थी वो ये थी कि नैन सिंह के लिए एक माला बनाई गई थी, क्योंकि उसको डिस्गाइज में बुद्धिस्ट रूप भी लेना था लामा का, तो उसको जो एक रोजरी दी गई थी वो 108 दानों के बदले 100 दानों की थी, यानी कि 100 कदम गिनेंगे तो एक बार की माला का चक्र पूरा हो जाएगा। माला का चक्र 20 बार पूरा होगा तो 2000 कदम हो जाएंगे, 2000 कदम हो जाएंगे तो नैन सिंह का 1 माइल हो जाएगा।
मगर फिर भी तिब्बत में नैन सिंह का सामना डाकुओं से हो ही गया।
रास्ता नापने बाबत समझाकर नौकर को आगे लद्दाखियों के हमराह भेज दिया। इतिफाकन थार कहीं यामडोकछो झील के किनारे गारतगरों की डेरा जो पड़ी थी, एक ने आकर मेरे घोड़े की बागडोर पकड़कर मुझसे कहने लगा कि घोड़े से उतरो। देवयोग से इतने में मोहम्मद शाह मुसलमान सन 57 का बागी, जो लद्दाखियों के साथ ल्यासा भागे जाता था, मेरे पीछे से पहुंच गया। वो शख्स बोध की बोली नहीं जानता था। उसने मुझसे पूछा कि इस शख्स ने तुम्हारे घोड़े की लगाम क्यों पकड़ रखी है। मैंने कहा कि ये गारतगर है, मुझको लूटने को तैयार है। मोहम्मद शाह ने चिल्लाकर गारतगर की ओर कमची उठाई तो ही उस झेकपा ने मेरे घोड़े की लगाम को तो छोड़ दिया, मगर तलवार मियाने से निकालकर उसके मारने को दौड़ा। मैंने फुर्सत चुपाई, घोड़े को कोड़ा मारकर चल दिया। मेरे पीछे पीछे मोहम्मद भी दौड़ आया। इतने में बहुत से गारतगर लोग दिखाई दिए, बहुत से कुत्ते बड़े बड़े हमारे पीछे छोड़ दिए, बाद दो फायर बंदूक भी किए।
उन दिनों हिंदुस्तानियों को सिर्फ व्यापार मंडियों तक जाने की इजाजत थी, और एक बार तिब्बत के अफसरों को नैन सिंह रावत के असली मकसद पर शक हो गया। नैन सिंह को ठोक जालुंग तक जाना था, पर अफसरों ने बीच में ही रोक दिया।
उसने मुझसे पूछा कि तुम कहां तक क्या काम में जाते हो। मैंने अपने तई व्यापार के वास्ते गारतोक तक जाने को जाहिर किया। तब वो बोला, हमने सुना है कि गुजश्ते अगले साल में तुम अंग्रेज बहादुर की ओर से सफीर होकर ल्हासा के तमाम नक्शा बनाकर सरकार अंग्रेज के पास भेजा है, न मालूम अब के किस तरफ का भेद ले जाने को आए हो। तब मैंने अपने तई ल्हासा तक पहुंचने बाबत बिल्कुल इनकार किया और उसे एक दिया सलाई देकर रुखसत किया, परंतु दिल में मेरा बड़ा संदेह हो गया कि मेरे ल्हासा से आने का खबर शायद यहाँ के हाकिमों के पास हो गया हो, तो ना मालूम मुझसे क्या सलूक करें।
नैन सिंह पूरे 100 दिन ल्हासा में रहे, तो ल्हासा की मठ, ल्हासा के लोग, ल्हासा की गलियां, ल्हासा के कुत्ते, ल्हासा के आगंतुक तीर्थयात्री, दलाई लामा, छोटा सा दलाई लामा था उसमें, उससे मिलने के लिए वो गए, और वो सब उन्होंने अपनी डायरी में छोड़ा है। जो उन्होंने सोसाइटी, कल्चर, भाषाएं, तमाम चीज़ें पकड़ी वो उनकी डायरी से ही हम पकड़ पाते हैं।
नैन सिंह रावत ने अपने कदमों को गिनकर, बौद्धों के मणिचक्र के चक्करों को गिनकर, घोड़े की टापों को गिनकर तिब्बत को नापा। उन्होंने वहां के समाज का भी गहरा अध्ययन किया। तिब्बत में उन्होंने देखा कि लोग बौद्ध लामाओं पर इतनी श्रद्धा रखते हैं कि उनके मल मूत्र तक को प्रसाद मानते हैं।
तिब्बती और चीनी लोग इन लामाओं को साक्षात परमेश्वर करके मानते हैं। उसके करामात का निश्चय यहाँ तक है कि लामाओं के पेशाब और थूक और उच्छिष्ट खाने को प्रसाद जानकर खा लेते हैं। चुनाचे लामा के पेशाब के साथ कई मसाले मिलाकर छया परिलू यानी पेशाब की गोली रंगीन गोलियां बनाई जाती हैं। लोग बड़ी श्रद्धा से उन गोलियों को बिना चबाए निकल जाते हैं। कहते हैं कि उन गोलियों को खाने से इस लोक में तो किसी प्रकार का रोग नहीं होता, मरने पर भी मोक्ष पदार्थ मिलता है।
डॉक्टर शेखर पाठक बताते हैं कि किस तरह नैन सिंह की समझदार नजर सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी जाती थी।
जो उसकी चार बड़ी यात्राएं थी उनमें से दूसरी यात्रा थोक जालूंगी थी, जहां वो सोने की खान, आपके नमक की खान और अवरक की खानों को देखने गया। और तो और, सोने की खानों में काम करने वाले मजदूरों के सामूहिक गीतों को भी उसने सुना। यारकंते की डायरी में वह बहुविवाह की प्रथा की जिक्र करता है कि यहाँ के जो एक दो जोरू से काम चलाने वाले खशम यहाँ बहुत कम हैं, ये उसने एक जगह लिखा हुआ है। यहाँ तो बहुत सारी शादियां करते हैं और ऐसा क्यों करते हैं करके भी वो मजाक करता है।
सुना है कि यारकंद में मर्दों के निस्बत औरतें ज्यादा हैं, हुस्न गोरे इंग्लैंडी औरतों के समान है। इन यारकंदियों में ये एक दस्तूर निहायत खराब है कि ख्वा 8 बरस की हो ख्वा 9-10 बरस की हो, लड़की के साथ निकाह कर लेते। इस बात पर लड़की के माँ बाप भी राजी हो जाते हैं। कहते हैं कि ऐसी कम उम्र की लड़कियां मर्द के सुहब्बत से अक्सर मर गईं तो भी ये लोग बाज नहीं आते। यहाँ तक कि एक आदमी अपने उम्र भर कम से कम 50-60 निकाह कर लेता, जो कोई जितना ज्यादा निकाह करता उतना ही वो बड़ा इज्जतदार कहलाता। अपने उम्र भर एक औरत और एक खशम पर सवर करने वाले सैकड़े में कोई एक निकलेगा।
नैन सिंह की डायरी से पता चलता है कि 150 साल पहले यारकंद में किस किस देश, नस्ल और जाति के लोग आते थे और वहां का खान पान कैसा था।
यारकंद में सब देश के आदमी रहते, चुनाचे चीन, कुचार, तुरफान, अक्सू, रोमची, कारा शहर, खोता, बुखारी, वदकशानी, कंदारी, वल्खी, काबुली, अफगानी, चतराली, कंजूती, वलती, काश्मीरी, लद्दाखी, हिंदुस्तानी, समरकंदी, ताशकंदी, अनजानी, तुंगानी, घोड़ा, ऊंट, बैल, भेड़, बकरी सब जानवरों का गोश्त खाते हैं।
जल्दी ही इस जांबाज घुमक्कड़ का डंका हिंदुस्तान से इंग्लैंड तक बजने लगा। हालात ये थे कि एक बार नैन सिंह की मृत्यु की अफवाह उड़ी और तभी महान अंग्रेज वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन की भी मृत्यु हुई।
टाइम अखबार के सन 1882 के किसी अंक में एक न्यूज छपी, ग्रेट पंडित डेड, और उसमें पूरी खबर थी। तो एडमंड स्मिथ करके जो अल्मोड़ा में एजुकेशन का अफसर था, नैन सिंह का पहला एम्प्लॉयर था, वो बहुत भावुक हो गया। उसने एक 4 पन्ने लंबी ऑबिचुअरी जो है पंडित नैन सिंह रावत पर लिखी। मजेदार बात यह है कि 1882 में जो एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व का जो व्यक्ति मरा था उसका नाम था चार्ल्स डार्विन। रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी की जर्नल में जो ऑबिचुअरी छपी थी वो चार्ल्स डार्विन की आधे पन्ने की ऑबिचुअरी छपी थी और पंडित नैन सिंह रावत की 4 पन्ने की ऑबिचुअरी छपी थी।
पर हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों ने अपने इस अन्वेषक को कितनी इज्जत बख्शी। देहरादून के सर्वे ऑफ इंडिया के दफ्तर में उनकी एक मूर्ति जरूर लगी है, पर अगर 21 अक्टूबर 2017 को नैन सिंह रावत का जन्मदिन मनाने के लिए गूगल उनकी याद में डूडल नहीं बनाता तो बहुत से लोगों के लिए ये नाम गुमनाम ही रह जाता।
राजेश जोशी की विवेचना पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। और चलते चलते कॉमनवेल्थ का अपडेट रेहान फसल से।
आज शुरुआत हुई शूटिंग से और शूटिंग में 2 स्वर्ण पदक आए भारत के। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में तेजस्वी सावंत ने स्वर्ण पदक जीता और फिर 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में अनीश ने स्वर्ण पदक जीता। और कुश्ती में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारत ने 1 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। बजरंग पूनिया ने स्वर्ण पदक जीता 65 किलोग्राम वर्ग में। इसके अलावा मौसम खत्री ने रजत पदक जीता और पूजा ठांडा ने भी रजत पदक जीता। अच्छी बात यह है कि भारत के 5 बॉक्सर फाइनल में पहुंच गए हैं, अमित, गौरव सोलंकी, मनीष कौशिक, विकास कृष्ण और सतीश कुमार, और मैरी कॉम पहले से ही पहुंची हुई है। इसका मतलब कि 6 भारतीय बॉक्सर स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला करेंगे कल। महिला टेबल टेनिस के डबल्स में भारत को रजत मिला, लेकिन पुरुष हॉकी फाइनल में भारत न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल में हार गया 2-3 से।
ये थे रेहान फजल। पीएम ने कठुआ रेप मामले पर क्या कहा है जानना चाहते हैं तो आइए bbchindi.com पर। दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे राजेश चौहान और कपिल देव सिंह। फेसबुक प्रसारण में मदद की ब्रजेश मिश्र ने। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में। वात्सल्य रायकर नमस्कार।